नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। युधिष्ठिर महाराज इसलिए कई प्रसंग पूछ रहे हैं कि हमारी जैसी आफत किसी और पर भी आई क्या। स्त्रियों में द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ स्त्री जो यज्ञ में से उत्पन्न हुई, जो जन्म से भी दिव्य है, भाव से भी दिव्य है, क्या और भी किसी स्त्री पर ऐसा कष्ट आया? तो राम कथा सुना दी, अब स्त्री के विषय में पूछा है। युधिष्ठिर जी ने पूछा,
राम जी वह एक दरी हूं पड़ी बाबी जगह पर बिछा दो।
युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा अपने लिए नहीं होता, न भाइयों के लिए होता, न राज्य छिन जाने का है। ये जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी ऐसी देखी सुनी है क्या कि जिस पर भी कोई ऐसी आफत आई हो? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन मैंने एक का नाम सुना है, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत्य का सुयश प्राप्त किया था, मैं उसकी कथा सुनाता हूं, बड़ी सावधानी से सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पूर्ववासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी का गर्भ रहा और यथा समय उसके कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने बड़े प्रसन्न होकर उस कन्या के जातकर्म आदि सब संस्कार करवाए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रख दिया। पिता का नाम अश्वपति था, बेटी का नाम सावित्री। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती देखकर प्रायः सभी पिता चिंतित रहते ही हैं। महाराज अश्वपति भी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वो पिता निंदनीय है। कई प्रकार की निंदनीय बातें शास्त्रों में बताई हैं। किसी अवस्था में पति भी निंदा का पात्र होता है और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वो पुत्र भी निंदनीय होता है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। कोई मुझे यह न कहे कि देखो पिता ने समय पर विवाह नहीं किया तो सावित्री ने किसको वर चुन लिया। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाओ। सती साध्वी तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने पिता को प्रणाम किया और सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल पड़ी। चलते चलते वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई, माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों में वंदना की और प्रत्येक वन से वन में विचरती रही। कहीं श्रेष्ठ तीर्थ स्थान आए तो ब्राह्मणों को दान पुण्य भी किया, तीर्थों का आदर किया और विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरण करने के पश्चात अपने पिता के घर पहुंची ही थी। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता से उसने दोनों को प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन ये आपकी पुत्री कहां गई थी और अब कहां से आ रही है? यह युवती हो गई फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? अश्वपति ने कहा, हे नारद जी, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और वह आज ही लौटी है। अब आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के कहने पर कि तू अपना सब वृत्तांत बता दे, सावित्री ने अपनी बात मानकर कहा, उनकी बात मानकर कहा, हे पिताजी और हे देवर्षि नारद, आपको प्रणाम करने के बाद मैं अपना निर्णय आपके चरणों में रखती हूं। मैं यहां से कई तीर्थों में गई, बहुत से संत महात्माओं के दर्शन किए, तपोवनों में गई, मेरे हृदय में बड़ी धार्मिक भावना उमड़ी। घूमते घूमते मैं शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़ी धर्मात्मा राजा थे, पीछे वे अंधे हो गए। इस प्रकार उनकी आंखें चली गई और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य भी हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भारिया के सहित वे वन में चले गए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उस राजकुमार का नाम सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मैंने अपने पति के लिए उन्हीं को ही अनुरूप पति माना है और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वरण भी कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन ये क्या बात बोलती है, ये तो बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई, जो इसने बिना जाने गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण करती है, इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा। राजा ने पूछा, अच्छा इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी बुद्धिमान क्षमावान सूरवीर तो है ना। और जब इनके पिता माता दोनों ही सत्य भाषण करने वाले हैं और उसके ऊपर सत्यवान नाम रखा है, हे नारद जी ऐसे वर में आपत्ति क्या है? नारद जी बोले, वह द्युमत सेन का वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंतिदेव के समान दाता, उसी नर के पुत्र शिव के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमार के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है, तेजस्वी है। तप और शील में बड़े वे ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास करता है और उसमें अपनी अविचल स्थिति हो भी गई है। राजा ने कहा, भगवान आप तो अभी सभी गुणों का संपन्न बता रहे हैं और इधर आप उपालम भी देते हैं कि सावित्री से बड़ी भूल हो गई। किस कारण से सावित्री की भूल हुई है वह दोष भी तो मुझे बताइए। नारद जी ने कहा कि सब कुछ गुण है पर एक दोष है और उस दोष के अंदर उसके सारे गुण दब जाएंगे और तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उस दोष को नहीं हटाया जा सकता, उसके सिवा उसमें कोई दोष नहीं। वो दोष तो बताइए, वो दोष यह है कि आज से एक वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। राजा घबरा गए और घबराते हुए उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सावित्री यहां देख तो फिर जा, किसी दूसरे वर की खोज कर, देवर्षि नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, सत्यवान के गुणों से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ परंतु जो उसकी सबसे बड़ी कमी बताई उससे मेरा हृदय दुखी हो गया। जब सत्यवान इतना अल्पायु है, एक वर्ष में मरने ही वाला है, फिर उसका वरण क्यों करती हो? किसी और का वरण कर लो। सावित्री ने कहा, पिताजी काष्ठ पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है, इसी प्रकार कन्यादान जीवन में एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक बार हुआ ही करती, एक बार ही हुआ करती है। अब तो मैंने एक बार वरण कर लिया, वह दीर्घायु हो अल्पायु हो, गुणवान हो गुणहीन हो, वही मेरा पति होगा, किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है, अतः मेरे लिए मेरा मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, हे महाराज अश्वपति जी, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि बड़ी निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में भी नहीं है, अतः मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है, जैसा सावित्री ने उसे वरण किया है आप उसे कन्यादान कर दें। राजा ने कहा, आपकी बात तो मैं नहीं टाल सकता, बेटी का भविष्य भी मैं खराब नहीं देख सकता, मैं क्या करूं, मुझे सावित्री बहुत प्रिय लगती है, मेरा दिल टूट रहा है, एक साल के बाद मैं सावित्री को किस अवस्था में देखूंगा। हे नारद जी महाराज, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, आप मुझे इस अवस्था से उबार कर निश्चित अवस्था पर पहुंचाइए। नारद जी ने कहा कि ऐसी जो बात कहने वाली सावित्री है, वो सावित्री अपने आप ही सब रास्ता बनाएगी। आपका काम जब आपने सावित्री के ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम अपने हिसाब से किसी वर को वर लो, तो अब आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। अतः आप विवाह कर दीजिए। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा ही आज्ञा को शिरोधार्य समझकर राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित करवाई। वृद्ध ब्राह्मण और पुरोहित के सहित सभी ऋत्विजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया। कन्या को लेकर रवाना हुए, सब सामग्री लेकर, क्योंकि ये विवाह तो तपोवन में ही होने वाला था। जब एक पवित्र वन में राजा द्युमत सेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही वे अश्वपति राजा भी उनके पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत सेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत सेन की बहुत आदर के साथ पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और फिर पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की है। तब अश्वपति ने कहा, हे राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है, इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कीजिए। अंधे द्युमत सेन ने कहा, हे महाराज, कहां आपका इतना विशाल राज्य और कहां हम लोग, हम तो राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहां वन में तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी कन्या राजमहलों में रहने वाली, क्या सब ये तपोवन का कष्ट सहन कर लेगी? अब यहां आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई ये पुत्री कैसे रहेगी? अश्वपति ने कहा, हे महाराज, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो इसी प्रकार का निश्चय करके आपके पास आया हूं कि मुझे तो अपनी पुत्री आपके पुत्र को ही देनी है। द्युमत सेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, लेकिन राज्य से च्युत हो जाने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही होना चाहिए, आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार करवाया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि दिए। इसके पश्चात अश्वपति आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र और गैरवे कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा गुण विनय संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ है। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों के द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपने वाणी का संयम रखते हुए ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए थोड़ा समय बीता। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वो समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रही। उसने अब तक कभी नहीं बताया कि नारद जी ने एक साल के बाद मृत्यु बताई है। नारद जी के वचन रोज गिनती रही। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वो दिन आ गया है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब कृत्य समाप्त कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मणों को, बड़े बूढ़े सज्जनों को, सास ससुर ससुर को क्रमशः प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे ऐसे आशीर्वाद दिए जो अवैधव्य के सूचक थे, अर्थात तुम्हारा सुभाग अखंड रहे, तुम मंगलाचरण वाली हो, ऐसे ऐसे। सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को इतना ही कहा कि ऐसा ही हो, आपकी कृपा से ऐसा ही हो, मेरे पति चिरंजीवी हो, इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, प्राणनाथ आप अकेले न जाएं, मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय तुम पहले कभी वन में गई नहीं, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम कई दिनों से उपवास के कारण दुर्बल भी हो गई हो, इस विकट मार्ग में पैदल कैसे चलोगी। सावित्री बोली, प्रियतम उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है, अब तो चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप मुझे रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूं, किंतु माताजी से और पिताजी से आज्ञा तो ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फल आदि लेने के लिए वन में जा रहे हैं, यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूं। इस पर राजा द्युमत सेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहु बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। आज तक इस बच्ची ने कुछ नहीं मांगा, अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तुम जाओ, मार्ग में सत्यवान की खूब साल संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती हंसती चल रही थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी, अपने पतिदेव को कुछ नहीं कहा कि मैं क्यों साथ में आई हूं, किंतु उसके हृदय में बड़ी दुख की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपने शोक को अपने नेत्रों से प्रकट होने नहीं दिया, अंदर ही अंदर रोती रही कि आज मेरे वैधव्य का दिन नहीं आ जाए, आज मैं कहीं विधवा न हो जाऊं। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली, फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आने लगा और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लग गया और सारे अंगों में तथा हृदय में भी दाह हो रहा है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है। मुझे ऐसा मालूम होता है मानो मेरे सिर में कोई बर्छी से छेदन कर रहा है। कल्याणी कुछ भी मन नहीं करता है, बस अब मैं सोना चाहता हूं, बैठ भी नहीं सकता, बैठने की भी शक्ति नहीं है। यह सुनकर हृदय में बहुत दुख को लिए हुए सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने हुए था, उसके सिर पर मुकुट था। अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ रहा था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल थे, हाथ में पाश था, देखने में बड़ा भयंकर मालूम पड़ता था। वह सत्यवान के पास आकर खड़ा हुआ, उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका ये शरीर मनुष्यों का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। युधिष्ठिर वे और कोई नहीं यमराज थे, सावित्री की विनय भरी और दुख भरी बात सुनकर यमराज ने कहा, सावित्री तुम पतिव्रता हो, तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुमसे संभाषण कर लूंगा। तुम मुझे यमराज समझो, तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पाश में बांध कर ले जाऊंगा, मैं यही करना चाहता हूं। तुम्हारी जैसी पतिव्रता की गोद में इसका सिर है, इस कारण मैंने अपने सेवकों को नहीं भेजा, क्योंकि पतिव्रता का पति मेरे सेवकों के द्वारा नहीं ले जाया जाता, अतः मैं स्वयं आया हूं। सावित्री ने कहा, मैंने तो सुना है मनुष्यों के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहां स्वयं आप कैसे आए? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा रूपवान गुणों का समुद्र है और फिर तुम इसकी पत्नी हो, अतः तुम दूतों के द्वारा ले जाने योग्य नहीं हो, इसी से मैं स्वयं आया हूं। इसके बाद यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पाश बांधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और पास में बांध कर ले जा दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वह दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तुम मेरे रास्ते के पीछे क्यों आ रही हो? तुम लौट जाओ और तुम्हारे पति का शरीर मृत हो चुका है, इसका अंतिम संस्कार करो। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई, पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक तुम आ चुकी, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। सावित्री बोली, हे यमराज, मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां भी स्वयं जाएंगे वहां मुझे भी जाना चाहिए ना, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं रुकी नहीं सकती है। यमराज बोले, सावित्री तेरी स्वर अक्षर व्यंजन और युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तू सत्यवान के जीवन के सिवा मुझसे कोई भी वरदान मांग ले, मैं तुझे सब वरदान देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे और इनकी आंखें भी नहीं है, सो मैं आपकी कृपा से उनके लिए नेत्र चाहती हूं, ये बलवान हो जाए और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी भी हो जाए। सावित्री, यमराज जी बोले, साध्वी सावित्री मैं तुझे ये वरदान देता हूं, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा, तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती, अब तू लौट जा, मैंने तुझे वरदान दे दिया, अब तुम और ज्यादा मेरे पीछे चलोगी तो तुम ज्यादा थक जाओगी। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं पर मेरा निश्चल आश्रम होगा। हे देवेश्वर, जहां पति को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना होता है। संत समागम निष्फल नहीं होता, अतः शास्त्रों में कहा है कि सत्पुरुषों के साथ सदा ही रहना चाहिए। और आप धर्मराज हो, यमराज हो, आप जैसे सत्पुरुष हमको कहां मिलेंगे? स्त्री के लिए पति जैसा सत्पुरुष कहां मिलेगा? उसका तो साथ छोड़ना नहीं चाहिए। यमराज जी बोले, सावित्री तुम्हारी बात अकाट्य है, तूने जो हित की बात कही वे मेरे मन को बड़ी प्रिय लगी, उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा फिर कोई दूसरा वरदान मांग लो, और कोई वरदान मांग लो, सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छिन गया था वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग न करें, ये आपसे दूसरा वरदान मांगती हूं। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, तुम लौट जाओ जिससे तुमको व्यर्थ परिश्रम न हो। सावित्री ने कहा, हे देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं, उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल देते हैं, इसी से आप यमनाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार का तो प्राय ये सभी लोक हैं जहां सभी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया किया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसी जल पीकर आनंद होता है, ऐसी तेरी बात मुझे बहुत प्रिय लगी। चलो, इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू और कोई अभीष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, ये मैं तीसरा वरदान मांगती हूं। यमराज बोले, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब लौट जा, अब तो बहुत दूर आ गई हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव की सन्निधि के कारण यह कुछ भी दूरी जान नहीं पड़ती है, ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया। मेरा मन तो बहुत दूर दूर तक दौड़ लगाता है, शास्त्रों में सुनते हैं ब्रह्मलोक, तो मेरा मन ब्रह्मलोक तक दौड़ता है। शास्त्रों में सुनते हैं स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक तक मन दौड़ता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूं उसे आप सुनने की कृपा करें। मैंने सुना है कि आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं। विवस्वान माने सूर्य, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। हां, आप शत्रु मित्रादि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। हां, इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं किया कर, अपने आप पर भी नहीं करता, सत्पुरुषों पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सूर्यता के कारण से हुआ करता है। अतः सौहार्द की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। आप बड़े सत्पुरुष हैं, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करती हूं। यमराज जी बोले, हे सावित्री, तूने जैसी बात कही वैसी मैंने तेरे सिवा किसी के मुख से नहीं सुनी, इतना संवाद मेरे से कोई नहीं करता, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा चौथा वरदान मांग ले और फिर लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हों, यह चौथा वरदान मैं मांगती हूं, मेरे 100 बेटा होना चाहिए। यमराज बोले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री अब तू लौट जा जिससे तुझे थकान न हो, बहुत दूर आ गई हो। सावित्री ने कहा सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत के आधार हैं, उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। ये सनातन सदाचार सत्पुरुषों का सेवित है, ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकारी होते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते कि हमने जिसका उपकार किया है वो समय आने पर हमारा भी करे, ऐसी दृष्टि नहीं होती। यमराज बोले हे पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त और चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरा अधिक से अधिक विश्वास और श्रद्धा भाव भी बढ़ता चला जा रहा है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है वो बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता, अतः अब मैं यही वर मांगती हूं कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूं ना। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले वह मुझे अच्छा ही नहीं लगता। पति के बिना मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, पति के बिना यदि लक्ष्मी जी आए तो मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, तथा पति के बिना मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है और फिर आप मेरे पतिदेव को ले जाए जा रहे हैं, अतः मैं जो यह वर मांग रही हूं कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आपका वचन सत्य होगा, इसलिए मैं वरदान मांग रही हूं। ये सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे सावित्री तुम जीत गए, सत्यवान का बंधन खोल दिया। और जाते जाते सावित्री से कहने लगे हे कुलनंदिनी कल्याणी सावित्री, मैं एक ओर तुम्हारे पातिव्रत्य से आनंदित था, दूसरी ओर तुम्हारे इन संवादों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं तेरे पति को छोड़ता हूं, अब ये सर्वथा निरोग हो जाएगा, तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवन जीवित रहेगा, धर्म पूर्वक अनुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा, इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। सावित्री तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म से मैं बहुत आनंदित होकर जा रहा हूं। सावित्री को वर देकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को लौट चले। यमराज जी के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा हुआ था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और पहले के भांति उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई। और वह सत्यवान की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, प्रिय मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने मुझे जगाया ही नहीं, और ये काले रंग का एक मनुष्य आया था, कौन था जो मुझे खींचे खींचे ले जाए जा रहा था। सावित्री देवी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देव श्रेष्ठ भगवान यम थे, अब वे अपने लोक को चले गए। देखिए देखिए सूर्य अस्त हो चुका है, रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें तो जैसे तैसे हुई हैं, फिर बातें करते रहेंगे, अभी तो आप जल्दी चलिए, पिता माता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है चलो। देखो अब मेरे सिर में दर्द नहीं है, इतना सिर का दर्द इतना जल्दी कैसे नष्ट हो गया, मेरे शरीर के किसी अंग में पीड़ा भी नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, नहीं पहले से कुछ अच्छा हो गया। मैं चाहता हूं तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था, संध्या होने से पहले मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी, दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरी माँ और मेरे पिता चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ में लेकर मुझे ढूंढने के लिए चलते थे। कल्याणी मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और उनकी सेवा में लगे हुए दुर्बल शरीर, अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे, जब तक मेरे पिता माता जीवित हैं तब तक मैं भी जीवन धारण किए हुए हूं। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई, उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और दाएं हाथ उसके कमर में डालकर उसे धीरे धीरे ले चली। सत्यवान ने कहा, भीरू इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं अच्छी तरह से परिचित हूं, धीरे धीरे क्यों चलते हो, अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लग गई है, हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे ये तो वही रास्ता आ गया, खूब अच्छी तरह से जानता हूं इसलिए अब सीधे सीधे इस मार्ग से चलो, क्यों विचार करती हो, अब मुझे सारे की भी जरूरत नहीं है, सावित्री मैं तो एकदम स्वस्थ हो गया हूं, माता पिता को देखने की मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर उसने सावित्री के हाथ को हटाया, जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। इसी बीच यमराज जी की कृपा से द्युमत सेन को दृष्टि भी प्राप्त हो गई, वो सब वस्तुएं देखने लगे, पुत्र के न आने से बड़ी चिंता हुई, उनकी रानी शैव्या के सहित वे सब आश्रमों में घूम घूम कर देखने लगे, अब तो उनके स्वयं के भी नेत्र काम करने लग गए थे, अतः चलने में फिरने में देखने में कोई कठिनाई नहीं थी। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए, उन्हें धीरज बांधकर उनके आश्रम में ले गए, वहां बड़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथा सुनाकर धैर्य बांधने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था, वह बड़ा सत्यवादी था, उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होगा। दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है, तपस्या भी की है तथा कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात भी मालूम होती है, अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य जीवित है। सब ऋषि मुनि कहने लगे, सत्यवान की स्त्री सावित्री में अवैधव्य के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं, अतः सत्यवान जीवित है। दालवी ऋषि ने कहा, देखिए महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको जो देखने की शक्ति मिली है ये सावित्री के व्रत का फल हो सकता है। उस सावित्री के साथ सत्यवान है, अतः वो अवश्य जीवित है। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने द्युमत सेन को इस प्रकार समझाया, तब उनकी बुद्धि कुछ स्थिर हुई और कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुसे। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया, नेत्र मिल गया। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे सो पहले क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता पिता तथा हम सबको बड़ी चिंता में डाल दिया, सो हम नहीं जानते इसका कारण क्या है, जरा सब बातें बताओ। तो सत्यवान कहने लगे, मैं पिता से आज्ञा लेकर सावित्री के साथ वन में गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा, असह्य पीड़ा होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इस वेदना में कुछ काम नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत देर तक सोता रहा, इतनी देर तो मैं पहले कभी सोया ही नहीं। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, इसी निमित्त में देरी हो गई, सावित्री ने जगाया नहीं और मैं चिरकाल तक सोता रहा और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता द्युमत सेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई, तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है, ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री के समान ही समझते हैं, तुझे भूत भविष्य की बातों का ज्ञान है, तू इसका कारण अवश्य जानती है, हमें उसे सुनने की इच्छा है, यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुनाओ। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है, आपका विचार मिथ्या नहीं है, मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है, सत्य सत्य बात सुनाती हूं, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे ये बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी, वह दिन आज आया था, इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे, साक्षात यमराज आए और उन्हें बांधकर दक्षिण दिशा को ले जाने लगे। मैंने सत्य वचनों द्वारा उस देवश्रेष्ठ की स्तुति करी, इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए, सो सुनिए, ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो, 2 वर तो ये हो गए। मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले तो 100 पुत्र मुझे और 100 पुत्री मुझे मिले, 2 ये हो गए। तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान की 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई, ये मैंने 5 वर मांगे। पतिदेव के जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने ये व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला, परम पवित्र आचरण करने वाली, पवित्र कुंड में जन्म लेकर आज तूने संसार में प्रतिव्रताओं का बहुत बड़ा गौरव बढ़ाया है। राजा द्युमत सेन का दुखाक्रांत परिवार आज तक अंधकार में डूबा रहा, तुमने उसे बचा लिया। मार्कंडे जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके सारे स्त्रियों में श्रेष्ठ सावित्री का सत्कार किया तथा राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से सब अपने अपने आश्रमों में चले गए। दूसरे ही दिन साल्व देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर द्युमत्सेन से कहा, वहां जो राजा था उसे उसके मंत्री ने मार डाला तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा। अब उस राजा का कोई वहां पर वंशधर नहीं है, शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर ये निश्चय किया है कि उन्हें चाहे भले ही न दिखे, चाहे वे अंधे ही हों, हमारे तो वे ही राजा होंगे। हे महाराज, ऐसा निश्चय करके हम आपके पास आए हैं। ये सवारियां तैयार है और चतुर्गिणी सेना भी लेकर आए हैं। आपका मंगल हो, अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोष हो रही है। आप अपने बाप दादों के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित होकर उनके सुयश को बढ़ाइए। फिर राजा द्युमत्सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहित ने बड़ी प्रसन्नता से द्युमत्सेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र वे संग्राम में पीठ न दिखाने वाले, यश की वृद्धि करने वाले बड़े शूरवीर थे। इसी प्रकार अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। सावित्री ने अपने को, अपने माता पिता को, सास ससुर को और पति को सभी प्रकार के संकटों से उबार लिया। इस प्रकार ये सावित्री के समान शीलवती, कुलकामिनी, कल्याणी, द्रौपदी भी आप सबका उद्धार करेगी। इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यक वन में ही रहने लगे। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी रहेगा, कभी उसके दुख नहीं पड़ेगा। जनमेजय ने पूछा, हे ब्रह्मन, लोमस जी ने इंद्र के वचनानुसार पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो ये महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते हो, उसे भी अर्जुन के स्वर्ग में आने पर मैं दूर कर दूंगा, सो वैशंपायन जी, महात्मा युधिष्ठिर को कर्ण से कौन सा बड़ा भारी भय था जिसकी वह किसी के आगे बात भी नहीं चलाते थे। कर्ण से भय था युधिष्ठिर को।